नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की औपबंधिक सूची कल जारी होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य के 45,000 गांवों में जमीन लगान नहीं चुकाने वालों की कर रही है पहचान। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और रोहतास जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर औपबंधिक सूची कल जारी की जाएगी। विभाग के अनुसार सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर संबंधित शिक्षक 6 से 9 सितम्बर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा स्थापना समिति करेगी। आपत्तियों के निराकरण के बाद 10 से 14 सितंबर के बीच अंतिम स्थानांतरण सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी अवधि में पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। अंतिम सूची जारी होने के बाद शिक्षकों के पदस्थापन और योगदान की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी। राज्य के केंद्रीयकृत रसोईघरों में अब सुबह 9 बजे के बाद ही मध्याह्न भोजन तैयार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली एजेंसियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, निर्धारित मात्रा और समय पर विद्यालयों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। श्री तिवारी ने बताया कि पूर्णिया में गुरुकुलम संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य संस्कृत शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को मजबूत आधार प्रदान करना है। नेपाल में हुए जल प्रलय के बाद राज्य में संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार की ओर से भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नया अलर्ट जारी होने के बाद राज्य सरकार अलर्ट है। श्री चौधरी ने कहा कि भागलपुर जिले के राघोपुर क्षेत्र में गंगा नदी के जलस्तर में कमी के बाद कटाव की स्थिति को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। मौके पर जल संसाधन विभाग के अभियंता और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। वहीं गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है।
अभी हम लोग पूरी तरीके से राघोपुर, जो भागलपुर में इलाका है गंगा नदी के किनारे, वो हम लोगों के लिए ज्यादा समस्या कारक बन रहा है और हम लोग वहाँ भी 2-3 टीमें अलग से लगा के हम लोगों ने यहाँ से अभियंता प्रमुख वहाँ कैंप कर रहे हैं और जिला प्रशासन से लेके विभाग के सारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और हर तरह की स्थिति के लिए हम लोग योजना बनाकर काम कर।
इधर गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए उप मुख्यमंत्री सह सारण जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जिले में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री यादव ने बताया कि तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है, संवेदनशील स्थानों का नियमित निरीक्षण हो रहा है। जिले के मकेर, पानापुर, दरियापुर, अमनौर, परसा और सोनपुर के नदी किनारे क्षेत्रों में बसने वालों को सतर्क किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं पटना के दीघा घाट में गंगा नदी का जलस्तर घटा है, जबकि पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। दूसरी तरफ संभावित बाढ़ को देखते हुए बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड बुडको ने भी पूरी तैयारी कर ली है। विभाग के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने बताया कि पुनपुन नदी के पास खानपुर और बरमुत्ता में दो अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। निदेशक ने बताया कि इन स्थानों पर 16 पंप लगाए गए हैं जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने संभावित बाढ़ और कटाव से निपटने के लिए दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद और दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के संवेदनशील रेलखंडों पर कर्मियों की तैनाती की है। कोइलवर, जयप्रकाश सेतु, क्यूल समेत प्रमुख रेल पुलों पर गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही रेलगाड़ियों की गति सीमा 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित कर दी गई है। इसके साथ ही संवेदनशील रेलखंडों के कई स्थानों पर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सेंसर लगाए गए हैं। जलस्तर के खतरे के निशान के पास पहुंचते ही सेंसर के माध्यम से अधिकारियों के मोबाइल पर अलर्ट मिलने की व्यवस्था की गई है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। राज्य के पूर्वी चंपारण के 7, पश्चिम चंपारण और मधुबनी जिले के 3-3 लोग अभी भी लापता हैं। परिजनों के अनुसार इन लोगों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इधर अब तक 4,400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राहत और बचाव कार्यों में 15,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि नेपाल में जल प्रलय में लापता और फंसे लोगों पर राज्य सरकार की नजर है। नेपाल सरकार से बातचीत हो रही है। जो लोग डूब गए हैं या लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। जो फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। शीघ्र ही उन्हें वापस लाया जाएगा। उन्होंने बागमती नदी घाटों के निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित राहत व बचाव कार्य करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के 45,000 गांवों में जमीन लगान नहीं चुकाने वालों की पहचान की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि विभाग अपना राजस्व बढ़ाने के लिए हर गांव में 100 बड़े बकायेदारों की पहचान कर रहा है। उन्होंने बताया कि इन बकायेदारों को SMS भेजकर लगान जमा करने की सूचना देने की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके लिए राजस्व विभाग NIC के माध्यम से विभाग को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि कई जिलों में जमीन के दस्तावेज अब भी पुरखों के नाम पर दर्ज हैं और इन जमाबंदियों से रैयतों के मोबाइल नंबर लिंक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ देने के लिए सभी अंचलों में मोबाइल और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया भी जारी है। मंत्री ने बताया कि राज्य में जमीन का सर्वे भी किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही 80% भूमि विवाद समाप्त हो जाएंगे। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मॉनसून की ट्रफ लाइन पूर्णिया होते हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और रोहतास जिले में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।
दिनांक 30 अगस्त को राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों के अनेक स्थानों पर, जबकि शेष भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
गया जी जिले के गुरपा पर्वत पर मूसलाधार बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग झुलसकर घायल हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
प्रदेश के वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता सतीश आनंद का कल दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। सतीश आनंद ने जेपी आंदोलन को रंगमंच के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने और उसे धार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किया जाएगा। वरिष्ठ रंगकर्मी के निधन से राज्य के रंगमंच और कला जगत में शोक की लहर है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य के 276 जल स्रोतों का विकास वाटर स्पोर्ट्स और रिवर सफारी के लिए करेगा। विभाग के अनुसार पटना में गंगा, बेगूसराय में कांवड़ झील, गया जी में फल्गु नदी और नालंदा के घोड़ा कटोरा समेत अन्य स्थानों पर इसे शुरू किया जाएगा। कटिहार जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित पति को 12 वर्ष कारावास के साथ 25,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पटना जिले के दीघा थाना क्षेत्र के पूर्व थाना अध्यक्ष संजीव कुमार पर कोर्ट के आदेश के बाद एक मामला दर्ज किया गया है। पटना जिले के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक बंद कमरे से 122 एटीएम कार्ड, बैंक चेकबुक और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने रग्बी फुटबॉल संघ के सचिव की पत्नी पर धोखाधड़ी करने के आरोप में कंकड़बाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने नेपाल त्रासदी पर लिखा है, अब जिंदगी बचाने की जंग, नेपाल ने मांगी मदद। 8 जिलों में करीब 1 लाख लोग बेघर, 275 भारतीय अब भी लापता। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोचिंग कारोबार में बिहार देश में तीसरे पायदान पर, हर माह औसतन 1100 करोड़ रूपये का है कारोबार। दैनिक भास्कर दारोगा बहाली पर लिखता है, दारोगा बहाली में स्टोर रूम में खींची थी पेपर की फोटो, ईओयू संभालेगी पूर्णिया और गया केस। प्रभात खबर ने लिखा है, दलित आरक्षण में कोटा पर टकराव, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, खेल दिवस पर 29 खिलाड़ी और 12 कोच किए गए सम्मानित। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने नेपाल त्रासदी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की औपबंधिक सूची कल जारी होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य के 45,000 गांव में जमीन लगान नहीं चुकाने वालों की कर रहा है पहचान। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और रोहतास जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।